सुबह की पहली किरण हवेली के बड़े बड़े खिड़कियों से अंदर उतर रही थी। आंगन में हल्की धूप फैल चुकी थी और नौकर चाकर अपने अपने काम में लग चुके थे, लेकिन आज हवेली का माहौल कुछ अलग था। गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और अगले ही पल दो आवाज़ें एक साथ गूंजी, दादी। दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल हुई धानी और वरुण। धानी करीब 20 साल की, आंखों में चमक, चेहरे पर अपनापन और दिल में ढेर सारा प्यार। वरुण 16 साल का, थोड़ा शरारती लेकिन उतना ही भावुक। दोनों एक हफ्ते के लिए हॉस्टल से घर आए थे और सबसे पहले उनका दिल दादी से मिलने को बेचैन था। वो दोनों जल्दी जल्दी अंदर की तरफ भागे। दादी कहाँ है? धानी ने आवाज़ लगाई, लेकिन अगले ही पल दोनों वहीं रुक गए। सामने का दृश्य देखकर उनके कदम जैसे जम गए। सुषमा देवी हाथ में पोचा लिए सोफे के पास झुकी हुई थी और फर्श साफ कर रही थी। उनकी साड़ी का पल्लू कंधे से खिसक रहा था और चेहरा थका हुआ था। धानी की आंखें फैल गईं। ये क्या? वरुण ने धीरे से कहा। दादी ये क्या कर रही हैं? अगले ही पल दोनों दौड़कर उनके पास पहुंचे। दादी! धानी ने उन्हें पकड़कर खड़ा किया और बिना कुछ सोचे सीधे उनके गले लग गई। दादी आप ये सब क्यों कर रही हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आप घर का काम क्यों कर रही हैं? आप यहाँ की ठकुराइन हैं। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। वरुण भी पास खड़ा आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रहा था। सुषमा देवी एक पल के लिए चौंक गई, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। अरे तुम लोग आ गए? उन्होंने प्यार से दोनों के सिर पर हाथ फेरा। कब आए? धानी ने उन्हें थोड़ा पीछे किया। दादी पहले ये बताइए आप ये सब क्यों कर रही हैं? सुषमा देवी ने नजरें चुरा ली। कुछ नहीं बेटा, घर का काम करने से अच्छा लगता है। उन्होंने बात को हल्का करने की कोशिश की। खाली बैठकर क्या करूं? लेकिन धानी को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। दादी आप हमें बच्चा समझती हैं क्या? उसने हल्के गुस्से में कहा। ये काम नौकर करते हैं, आप क्यों? वरुण ने भी धीरे से कहा। दादी आपने कभी ये सब नहीं किया, अब क्यों? सुषमा देवी के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द आया, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। अरे तुम लोग भी ना? उन्होंने हंसने की कोशिश की। इतनी सी बात को बड़ा बना रहे हो, चलो पहले फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। धानी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आज आप कुछ नहीं करेंगी, हम आपके साथ बैठेंगे, बस। उसकी जिद साफ दिख रही थी। तभी बाहर से कदमों की आवाज़ आई। सुजीत अंदर आया और सामने का दृश्य देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी खीज आ गई। अरे तुम लोग आ गए? उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, फिर सीधे बोला, दादी को काम करने दो, चलो तुम्हारी माँ तुम लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उसकी आवाज़ में आदेश साफ था, लेकिन धानी ने बिना डरे जवाब दिया, नहीं पापा, हम तो दादी के साथ ही रहेंगे। वरुण ने भी सिर हिला दिया, हाँ हम यहीं बैठेंगे। सुजीत का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। जिद मत करो, पहले जाओ अपनी माँ से मिलो। तभी पीछे से एक और आवाज़ आई, बहुत अच्छा। सब ने मुड़कर देखा, सुप्रिया खड़ी थी, हाथ बांधे और चेहरे पर नाराज़गी साफ थी। माँ से मिलने का मन नहीं है क्या? उसने ताना मारते हुए कहा। धानी ने सीधा उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्की आग थी। आपसे क्यों मिले? उसने साफ साफ कहा। आप लोगों ने ही हमें हॉस्टल भेजा था, अब याद आ रही है माँ? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सुप्रिया के चेहरे का रंग बदल गया। वाह, वो हंसी, लेकिन वो हंसी तन से भरी थी। देखो अब हम ही गलत हो गए, बच्चों के भले के लिए क्या किया और बदले में क्या मिला? उसने नाटकीय अंदाज में कहा। लो मेरे बच्चों, हम तुम्हारे दुश्मन बन गए। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। वरुण थोड़ा असहज हो गया, लेकिन धानी पीछे नहीं हटी। भला? उसने हल्के कटाक्ष में कहा। यह अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा, हमें भेज दिया ताकि यहाँ आराम से रह सको। सुजीत गुस्से में आ गया। धानी हद में रहो, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। लेकिन इससे पहले की बात और बिगड़ती, सुषमा देवी बीच में आ गई। बस बहुत हो गया, उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें एक अजीब सी मजबूती थी। सब चुप हो गए। उन्होंने धानी और वरुण को अपने पास खींचा और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, उन्होंने नरम आवाज में कहा, माँ बाप जो करते हैं हमेशा बच्चों के भले के लिए करते हैं। धानी ने तुरंत कहा, लेकिन दादी, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा, लेकिन ऐसे बात नहीं करते। उनकी आंखों में ममता थी और कहीं ना कहीं दर्द भी। उन्होंने सुप्रिया की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, और तुम बच्चों से ऐसे बात नहीं करते, ये बच्चे हैं, इनका दिल जल्दी टूटता है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा थोड़ा भारी था। धानी चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वरुण ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सुषमा देवी ने दोनों को गले से लगा लिया। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, उन्होंने हल्की मुस्कान दी।
आज का दिन अच्छा रहेगा, इतने दिनों बाद मेरे बच्चे घर आए हैं। उनकी आवाज में सच्ची खुशी थी, लेकिन अंदर कहीं एक नया तूफान भी जन्म ले चुका था जिसे अब शायद कोई रोक नहीं पाएगा। कमरे के अंदर धानी अपने बैग खोलकर सामान निकाल रही थी। बिस्तर पर कपड़े, किताबें और छोटी छोटी चीजें फैली हुई थी। फोन उसके कंधे और कान के बीच दबा हुआ था और वो मुस्कुराते हुए अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। हाँ, पहुंच गई मैं, और हाँ, यहाँ सब वैसा ही है, वो हल्का सा हंसती। बस दादी को देखकर थोड़ा अजीब लगा। तभी दरवाजा हल्के से खुला, सुप्रिया अंदर आई। धानी ने एक नजर उसकी तरफ डाली, फिर फोन पर ही बोली, ठीक है, बाद में बात करती हूँ। उसने कॉल काट दिया। कमरे में हल्की खामोशी छा गई। सुप्रिया धीरे धीरे अंदर आई और इधर उधर फैले सामान को देखने लगी। बेटा, अगर गंदे कपड़े हों तो दे दो, उसने थोड़ा नरम लहजे में कहा, मैं धो देती हूँ। धानी एक पल के लिए रुक गई, फिर धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी थी और थोड़ा तंज भी। अच्छा, उसने भौं उठाते हुए कहा, आप कपड़े धोएंगी? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी बात में सीधा सवाल था। सुप्रिया थोड़ी असहज हो गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, हाँ तो, माँ हूँ तुम्हारी, कर सकती हूँ इतना। उसकी आवाज में हल्की सफाई थी। धानी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान मीठी नहीं थी। अचानक इतना ख्याल कैसे आ गया? उसने सीधे पूछा। कमरे का माहौल फिर से थोड़ा भारी हो गया। सुप्रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम लोग इतने दिनों बाद आए हो तो सोचा थोड़ा ध्यान रखूं। लेकिन धानी की नजरें जैसे उसके अंदर तक देख रही थी, या फिर दिखावा है, उसने धीरे से कहा। ये सुनकर सुप्रिया का चेहरा सख्त हो गया। धानी, बात करने की तमीज सीखो, उसने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा। लेकिन धानिया पीछे हटने वालों में नहीं थी। तमीज? वो हल्का सा हंसी। वो तो आपने हमें सिखाई ही नहीं।